नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, एग्जाम रेफ डीपी 900 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा फंडामेंटल्स। डेनियल ए सियारा और फ्रांसिस्को मिलानो की माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणन परीक्षा के लिए बनाई गई आधिकारिक अध्ययन पुस्तक है। यह सामान्य डेटा अवधारणाओं को एज्योर की क्लाउड सेवाओं से जोड़कर समझाती है। पुस्तक का उद्देश्य केवल शब्दावली याद कराना नहीं, बल्कि पाठक को यह पहचानने योग्य बनाना है कि अलग प्रकार के डेटा, कार्यभार और व्यावसायिक जरूरतों के लिए किस तरह की एज्योर सेवा उपयुक्त हो सकती है। इसकी विषय वस्तु में रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटा, ट्रांजैक्शनल तथा एनालिटिकल वर्कलोड, डेटा स्टोरेज, क्वेरी और आधुनिक एनालिटिक्स समाधान शामिल है। एज्योर डेटा फैक्ट्री, एज्योर सिनेप्स एनालिटिक्स, एज्योर डेटाब्रिक्स और एज्योर एचडी इनसाइट जैसे प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आते हैं। मूलतः यह एक परीक्षा केंद्रित तकनीकी संदर्भ है जो व्यवसाय उपयोगकर्ताओं, फंक्शनल कंसल्टेंट्स और शुरुआती डेटा पेशेवरों को एज्योर के डेटा परिदृश्य का व्यवस्थित परिचय देता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटा कार्यभारों की पहचान और सही समाधान चुनने का आधार। पुस्तक की शुरुआती उपयोगिता इस बात में है कि यह डेटा को केवल फाइलों या डेटाबेसों के संग्रह के रूप में नहीं देखती, बल्कि कार्यभार के संदर्भ में रखती है। किसी संगठन में डेटा समाधान का चुनाव इस प्रश्न से शुरू होता है कि प्रणाली को किस प्रकार का काम करना है। ट्रांजैक्शनल कार्यभार सामान्यतः तेज, छोटे और निरंतर रिकॉर्ड बदलावों से जुड़े होते हैं, जैसे किसी ऑर्डर या भुगतान की स्थिति बदलना। इसके विपरीत, एनालिटिकल कार्यभार बड़े डेटा संग्रहों पर पैटर्न, सारांश और रिपोर्ट खोजने के लिए बनाए जाते हैं। यह अंतर इसलिए निर्णायक है क्योंकि दोनों के प्रदर्शन, संरचना और सेवा चयन की जरूरतें अलग होती हैं। पुस्तक बैच और स्ट्रीमिंग प्रसंस्करण के भेद को भी इसी निर्णय ढांचे में रखती है। बैच में डेटा को अंतरालों पर समूहों में संभाला जाता है, जबकि स्ट्रीमिंग में आते हुए डेटा पर निकट रियल टाइम प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है। इस तरह पाठक सेवा के नाम रटने के बजाय उपयोग स्थिति से सोचना सीखता है। डीपी 900 स्तर पर यही व्यावहारिक विवेक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर किसी आवश्यकता के लिए उपयुक्त डेटा क्षमता पहचाननी होती है। पुस्तक का ढांचा इस बुनियादी निर्णय को रिलेशनल स्टोरेज, नॉन रिलेशनल स्टोरेज और एनालिटिक सेवाओं के आगे के अध्ययन से जोड़ता है। दूसरा, रिलेशनल डेटा में संरचना, क्वेरी और एज्योर डेटाबेस विकल्प। रिलेशनल डेटा संबंधी भाग उन बुनियादी सिद्धांतों पर केंद्रित है जिनके बिना क्लाउड डेटाबेस सेवाओं का मूल्यांकन अधूरा रहता है। रिलेशनल मॉडल में डेटा पंक्तियों और स्तंभों वाली तालिकाओं में व्यवस्थित होता है तथा तालिकाओं के बीच संबंध बनाए जा सकते हैं। ऐसी संरचना तब विशेष रूप से उपयोगी है जब डेटा की परिभाषा स्पष्ट हो, रिकॉर्डों की संगति आवश्यक हो और क्वेरी द्वारा नियंत्रित ढंग से जानकारी निकालनी हो। पुस्तक एज्योर के रिलेशनल डेटा प्रस्तावों, उनके प्रावधान और परिनियोजन की बुनियादी समझ विकसित करने की दिशा देती है। इसमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रबंधित क्लाउड डेटाबेस का अर्थ केवल दूरस्थ सर्वर पर डेटाबेस चलाना नहीं है। सेवा प्रदाता संचालन के कई पहलुओं को संभाल सकता है, जबकि उपयोगकर्ता डेटा मॉडल, पहुंच और उपयोग की जरूरतों पर ध्यान रखता है। क्वेरी का विषय भी इसी आधार पर आता है, क्योंकि रिलेशनल प्रणाली की शक्ति संरचित प्रश्नों के माध्यम से डेटा को चुनने, जोड़ने और सारांशित करने में है। यह भाग उन्नत डेटाबेस प्रशासन की किताब नहीं बनता, इसके बजाय यह पाठक को रिलेशनल जरूरत पहचानने, सामान्य क्लाउड तैनाती अवधारणाओं को समझने और एज्योर संदर्भ में डेटाबेस विकल्पों की भूमिका जानने लायक बनाता है। परीक्षा के लिए यह संतुलन उपयोगी है, क्योंकि जोर विशेषज्ञ कॉन्फ़िगरेशन से अधिक सही अवधारणा और सही सेवा प्रकार की पहचान पर है। तीसरा, नॉन रिलेशनल डेटा स्टोर और लचीले डेटा मॉडल की भूमिका। पुस्तक रिलेशनल मॉडल को सार्वभौमिक उत्तर के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि नॉन रिलेशनल डेटा स्टोर की जरूरत को अलग ढंग से स्पष्ट करती है। कई अनुप्रयोगों में डेटा का प्रारूप एक जैसा नहीं रहता, संबंधों को तालिकाओं में कठोरता से बांधना आवश्यक नहीं होता या बहुत बड़े पैमाने पर तेज पहुंच चाहिए होती है। ऐसे संदर्भों में नॉन रिलेशनल विकल्प प्रासंगिक हो सकते हैं। यह क्षेत्र दस्तावेज की वैल्यू, ग्राफ और अन्य गैर पारंपरिक डेटा संरचनाओं की बुनियादी अवधारणा से जुड़ा है। मुख्य सीख यह है कि लचीलापन अपने आप में श्रेष्ठता नहीं है। डेटा मॉडल का चुनाव उस तरीके से होना चाहिए जिसमें अनुप्रयोग डेटा लिखता, पढ़ता और बदलता है। उदाहरण के लिए, बदलते गुणों वाले रिकॉर्ड के लिए कठोर स्कीमा की अपेक्षा अधिक लचीला मॉडल उपयोगी हो सकता है, पर जटिल तालिका संबंधों और सुसंगत लेनदेन की जरूरत में रिलेशनल दृष्टि बेहतर हो सकती है। एज्योर के नॉन रिलेशनल डेटा प्रस्तावों को समझते समय यही तुलना आवश्यक है। पुस्तक पाठक को यह बोध कराती है कि क्लाउड में सेवा चुनना केवल क्षमता या लोकप्रियता का मामला नहीं, बल्कि डेटा की प्रकृति, पहुंच, पैटर्न और संचालनात्मक आवश्यकता का मामला है। यह परीक्षा के वर्णनात्मक प्रश्नों तथा वास्तविक प्रारंभिक समाधान चर्चाओं दोनों में उपयोगी आधार देता है। चौथा, डेटा फैक्ट्री। सिनेप्स और डेटाब्रिक्स के जरिए आधुनिक एनालिटिक्स दृष्टि आधुनिक डेटा एनालिटिक्स वाला भाग पुस्तक को केवल डेटाबेस परिचय से आगे ले जाता है। यहाँ जोर इस बात पर है कि संगठन अलग अलग स्रोतों से डेटा लेकर उसे विश्लेषण के योग्य रूप में कैसे पहुंचाते हैं। एज़्योर डेटा फैक्ट्री को डेटा एकीकरण और डेटा गतिशीलता की व्यापक आवश्यकता के संदर्भ में समझा जा सकता है। एज़्योर सिनेप्स एनालिटिक्स बड़े पैमाने के विश्लेषण और डेटा वेयरहाउस उन्मुख कामों से जुड़ता है, जबकि एज़्योर डेटाब्रिक्स डेटा इंजीनियरिंग और बड़े डेटा प्रसंस्करण के परिदृश्य में आता है। एज़्योर HD इनसाइट भी बड़े डेटा तकनीकों के लिए एज़्योर का एक विकल्प है। पुस्तक का मूल्य इन उत्पादों की गहरी प्रशासनिक विधियां सिखाने में नहीं बल्कि उनकी भूमिकाओं को अलग करने में है। डेटा पाइपलाइन, स्टोरेज, प्रसंस्करण और विश्लेषण एक ही काम के नाम नहीं है। स्रोत से डेटा लाना, उसे रूपांतरित करना, बड़े पैमाने पर गणना चलाना और रिपोर्टिंग या निर्णय के लिए उपलब्ध कराना अलग चरण हो सकते हैं। इस अंतर को समझने पर पाठक किसी एनालिटिक्स समाधान को घटकों के समूह के रूप में देखता है, न कि एक अकेली सेवा के रूप में। DP 900 के लिए यह व्यापक वास्तु दृष्टि पर्याप्त और प्रासंगिक है, क्योंकि लक्ष्य डेटा प्लेटफॉर्म विशेषज्ञता नहीं प्रमुख एज़्योर विश्लेषण सेवाओं की भूमिका पहचानना है। अंत में परीक्षा केंद्रित स्वमूल्यांकन और आधारभूत पेशेवर निर्णय क्षमता एग्जाम रेफ श्रृंखला की पहचान उसका प्रमाणन केंद्रित संगठन है और यह पुस्तक भी उसी उद्देश्य से बनाई गई है। इसकी सामग्री DP 900 परीक्षा में मापे जाने वाले ज्ञान क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है। स्वमूल्यांकन प्रश्न, परीक्षा संबंधी संकेत और अभ्यास की प्रवृत्ति पाठक को केवल पढ़े हुए विषय से परिचित होने के बजाय अपनी समझ की कमियां पहचानने में मदद करती है। इस प्रकार की पुस्तक में प्रश्नों का महत्व उत्तर याद करने में नहीं बल्कि अवधारणाओं के बीच अंतर स्पष्ट करने में है। उदाहरण के लिए, यदि पाठक ट्रांजैक्शनल और एनालिटिकल कार्यभार या रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटा की जरूरतों को स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर पाता तो वह सेवा चयन वाले प्रश्न में भ्रमित हो सकता है। पुस्तक का परीक्षा ढांचा ऐसी कमजोरियों को सामने लाने के लिए उपयोगी है। साथ ही इसका लक्षित पाठक वर्ग केवल तकनीकी डेवलपर नहीं है, व्यवसाय उपयोगकर्ता और फंक्शनल कंसल्टेंट भी डेटा सेवाओं से संबंधित निर्णयों, बातचीत और आवश्यकताओं में भाग लेते हैं। इसलिए पुस्तक का आधारभूत स्तर एक व्यावहारिक सीमा भी तय करता है। यह उत्पादन प्रणाली बनाने, जटिल प्रदर्शन सुधार करने या गहरे सुरक्षा प्रशासन का पूर्ण मार्गदर्शक नहीं है। इसका उचित उपयोग परीक्षा की रूपरेखा समझने, विश्वसनीय आधार बनाने और आगे की भूमिका आधारित एज़्योर शिक्षा के लिए तैयारी करने में है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज़्योर डेटा फंडामेंटल्स प्रमाणन की तैयारी कर रहे हैं और एज़्योर डेटा सेवाओं की बुनियादी व्यवस्थित समझ चाहते हैं। व्यवसाय विश्लेषक, फंक्शनल कंसल्टेंट, नए डेटा विश्लेषक, क्लाउड में प्रवेश कर रहे पेशेवर और तकनीकी टीमों के साथ काम करने वाले गैर विशेषज्ञ पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ सेवा नामों की सूची याद कराने से अधिक है। पाठक डेटा कार्यभार, डेटा मॉडल और एनालिटिक्स जरूरत के बीच संबंध समझकर अधिक सटीक प्रारंभिक निर्णय और संवाद कर सकता है। रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल स्टोर, बैच, स्ट्रीमिंग और आधुनिक एनालिटिक्स सेवाओं को एक ही एज़्योर परिदृश्य में रखने से अवधारणाएं अलग अलग अध्यायों की जानकारी बनकर नहीं रह जाती। समान विषय की सामान्य एज़्योर परिचय पुस्तकों की तुलना में इसका प्रमुख अंतर प्रमाणन उद्देश्यों के साथ निकट संरेखण है। माइक्रोसॉफ्ट प्रेस की एग्जाम रेफ के रूप में यह परीक्षा में अपेक्षित वैचारिक दायरे पर केंद्रित रहता है और स्वमूल्यांकन आधारित तैयारी को महत्व देता है। हालांकि जिन पाठकों को उत्पादन स्तरीय वास्तुकला, विस्तृत कोडिंग, लागत अनुकूलन या गहन प्रशासन चाहिए, उन्हें इसके बाद अधिक विशिष्ट संसाधनों की जरूरत होगी। फिर भी आधारभूत स्तर पर इसकी स्पष्ट सीमा ही इसकी ताकत है। यह एज़्योर डेटा प्लेटफॉर्म के विशाल विकल्पों को शुरुआती पाठक के लिए उपयोगी निर्णय ढांचे में संक्षिप्त करता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डैनियल सियरा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।